الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی ہم 223 نمبر آیت 223 سے شروع کر رہے ہیں. فرمایا ہے کہ نساؤکم حرثن لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. تمہاری بیویاں تمہارے لیے حرص ہیں, تو اپنی حرص میں جب چاہو جیسے چاہو آؤ, اور اپنے لیے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اقدام کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور جان لو کہ تم اللہ سے مل کر رہو گے. تو اس موقع پر بات کو ماننے والوں کے لیے بشارت ہے. یہ آیت پاکستان میں بہت ہی زیر بحث رہی ہے کہ نساؤکم حرثن لکم, چونکہ ہم نے ترجمہ کر دیا کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی ہیں. تو اب کھیتی تو ایک ملکیت کی چیز ہوتی ہے کسان کی, تو اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ بیوی بھی شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہے. اس سے پھر عورت کی حیثیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اسلام میں عورت کی حیثیت بس کھیتی کے برابر ہے. تو اس میں دو تین باتیں نوٹ کر لیجئے. ایک یہ کہ جب کوئی چیز مجازن استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب حقیقی معنی میں لینا یہ زبان کے ساتھ ناانصافی ہے. مثلا میں آپ کو کہوں کہ آپ شیر ہیں, تو آپ اس کے بات کرنا شروع کریں تم نے تو مجھے جانور کہہ دیا ہے, تم نے مجھے جانور کہہ دیا ہے, تو یہ تو غلط بات ہو. یہ تو اصل میں آپ نے زبان کو جو لسانی شعور ہوتا ہے اس کے نہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں نے آپ کی تعریف کی کہ آپ شیر ہیں, اور آپ نے کہا جی کہ اب تم نے مجھے جانور کہہ دیا. تو شیر کہنے کا مطلب جانور کہنا نہیں ہوتا بلکہ بہادری بتانا مطلب تھا. ایسے ہی حرثن لکم کہہ کر کھیتی کہنا پیش نظر نہیں ہے, یہ مجاز کا اسلوب ہوتا ہے. میں واضح کرتا ہوں کہ یہاں کیا مطلب ہے, لیکن بہرحال یہ مجاز کا اسلوب ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتیں کھیتی ہیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ عربوں کے ہاں جو حرث کا لفظ ہے اس کے ایک خاص پہلو سے وہ استعمال کرتے ہیں, اور قرآن مجید نے بھی ایک پہلو کو واضح کیا ہے. پاکستان میں پیدا ہونے والے, دنیا بھر میں پیدا ہونے والے جتنے بھی بچے ہیں وہ کسی باپ کے کب بنتے ہیں, کسی باپ کا نام سے کب منسوب ہوتے ہیں, جب وہ اس کی صلب سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی بیوی سے پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی ہیں, کسی اور کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ, کسی اور کی بیوی کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ کسی اور کے نام منسوب نہیں ہوتا. یا ہو جاتا ہے, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اپنے بچے وہی ہیں جو ان کے گھر میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اس کو ایک اور پہلو سے سمجھے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. قرآن مجید میں قریش مکہ نے یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں, بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی, فرشتے جو لات اور عزہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جواب دیا ان کو. ایک یہ جواب دیا کہ میں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تو میں کہتا ہوں بن جا, کن فیکون کہتا ہوں تو بن جاتی, تو جس کو بھی میں بناؤں گا میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا. تو جو میری آپ کی حیثیت ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی. تو اگر اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے کہیں کہ میرا بیٹا بن جائے تو وہ اللہ کی مخلوق ہوگی, وہ خدا تو نہیں ہو سکتا. جب مخلوق ہوگی تو اللہ کا بیٹا کیسے ہوا؟ اللہ کے بیٹے کو بھی خدا ہی ہونا چاہیے, اور وہ کلمہ کن سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی کوئی کلمہ کن سے بنا ہوگا تو وہ مخلوق ہو جائے گی. ایک جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. کسی کے اندر دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے, کسی کو بڑھاپے میں سہارا چاہیے ہوتا ہے, کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی جو چیز کرنا چاہتا ہوں میں کر لیتا ہوں, بس کلمہ کن کہتا ہوں کر لیتا ہوں, تو مجھے بیٹوں کی اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ये इसी के अंदर जो एक जवाब दिया। दूसरा जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया कि अल्लाह ताला के बेटा कैसे हो सकता है, वलम तकुन लहू साहिबा, उसकी तो कोई बीवी नहीं है, उसकी तो कोई बीवी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर अल्लाह की भी बेटा होना चाहिए तो वो भी वैसे ही होना चाहिए जैसे तुम्हारा बेटा होता। इस बात को बयान करने के लिए हरसुन लकुम के अल्फाज आए कि तुमने अपनी औलाद जब चाहनी है तो उस सूरत में बीवियां ही जरिया बनेगी। खेती बमाना खेती नहीं बोला गया यहाँ पर, यानी मुझे अगर अपनी औलाद चाहिए तो मुझे अपनी बीवी बनानी पड़ेगी कोई खातून, आपको अपनी औलाद चाहिए तो आपको अपनी अपनी बेगमात चाहिए। ये है वो हरसुन लकुम के मानी। उसको बयान किया अल्लाह ताला ने कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद का जरिया हैं। ठीक है, अब औलाद हासिल करने के लिए जैसे चाहो जब चाहो आओ, पर सादा सा मतलब ये था उसका। चूँकि हम तर्जमा भी खेती करते हैं, हम भी जब तर्जमा खेती करते हैं तो असल मजाजी का सलूक इख्तियार कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि खेती बमाना खेती कह रहे होते हैं, जैसे शेर बमाना जानवर नहीं कहना पेश नज़र। तो निसाउकुम हरसुन लकुम का मतलब यह था कि तुम्हारी अपनी औलाद हासिल करने के लिए तुम्हारे पास वाहिद ज़रिया तुम्हारी अपनी बेगमात, तो जब वो हैं तो इनके पास इस मकसद के लिए जहाँ से चाहो जैसे चाहो जिस तरह से चाहो आओ। तो एक बेतकल्फ़ी का एक अपनाइत का जुमला है जो ये बोला गया है। अब इस वजह से औरत की कोई हैसियत छोटी नहीं हो गई है या उसको खेती कहने से कोई मसला पैदा नहीं हो गया है, बल्कि ये बताया गया है कि तुम्हें जिस जिस औलाद को तुम अपनी निस्बत देना चाहते हो उसके लिए एक ही ज़रिया है कि तुम्हारी अपनी बेगमात हो, दूसरे की औलाद को तुम अपनी औलाद करार नहीं दे सकते हो। उस चीज़ को बयान किया। तो अब जब ये सूरत हाल है तो फिर ज़ाहिर है कि इसके लिए जो भी तकाज़े अखलाक के होंगे जो भी इंसानियत के होंगे उन सबको बराबर की सतह पर रख कर देखा जाएगा। तो निसाउकुम हरसुन लकुम, तो तुम्हारी बेगमात तुम्हारे मैं निसा का तर्जमा बेगमात या बीवियाँ कर रहा हूँ, पीछे भी मैंने यही तर्जमा किया था और अब भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कुरान मजीद की अरबी में, बल्कि अभी भी अरबी में ऐसा ही है, हमारे मैंने उर्दू की मिसाल भी दी थी कि जब एक औरत कहती है मेरा बंदा आया है तो इसका मतलब शौहर है, वहाँ उसने लफ्ज़ बंदा बोला जिसके मानी आदमी के होते हैं लेकिन मतलब शौहर के होंगे। तो इसी तरह से जब कुरान मजीद के ज़माने की अरबी में और आज की अरबी में भी किसी की तरफ निस्बत की जाए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी औरत, तो इसका मतलब तुम्हारी बीवी है, और जब कहा जाएगा तुम्हारा बंदा रिजालुकुम जैसे आया रिजाल रिजालुकवामून अला निसा, तो वह फिर शौहर के मानी में होगा। तो तुम्हारी औरतें यानी तुम्हारी बेगमात। तो अपनी इस इन हर्ष में जहाँ से चाहो जैसे चाहो आओ। अब ऊपर जो बात की थी कि फातुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, इसको अल्लाह ताला ने हरसुन के लफ्ज़ के ज़रिए से वाज़े कर दिया कि बीवी के पास जाने का अमल जो है वो औलाद की हसूल के लिए होता है और उसका जो सही फितरी तरीका है वही इख्तियार किया जाएगा। उसी के लिहाज से अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब इस लिहाज से इस चीज़ की ख्याल रखते हुए जैसे चाहो जहाँ से चाहो आ सकते हो। वक़द्दमु लिअन्फुसिकुम, और अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए इकदाम करो यानी औलाद हासिल करो। आगे फरमाया वत्तकुल्ला, अब औलाद हासिल करने में और तकवे के अंदर एक ताल्लुक है, अल्लाह ताला वो जोड़ना चाहते हैं ताकि हसूल औलाद जो है उसका मकसद सामने आ जाए, औलाद कैसी होनी चाहिए वो सामने आ जाए और ये बात सामने आ जाए कि ये रिश्ता इज़दवाज क्यों कायम किया जाता है। कद्दमु लिअन्फुसिकुम, कुछ हासिल करने के लिए कोई इकदाम करो, तो इसका मतलब है कि साले औलाद के लिए कोशिश करो कि तुम्हें साले औलाद हासिल हो। इसी पहलू के ऊपर हरसुन लकुम से बयान किया तो तुम्हारे लिए हर्ष हैं ताकि तुम अपनी औलाद हासिल कर सको और अल्लाह से डरते रहो इस सारे अमल में, अपनी बेगम के पास जाने में, बेगम का शौहर के पास जाने में, इनमें अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना है, हकूक़ व फ़राइज़ अदा करने हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा करनी हैं और औलाद के हसूल के लिए भी तकवा इख्तियार करना, यानी उनको पालो पोसोगे ये करोगे, तो ऐसे ही औलाद पैदा नहीं करते चले जाना चाहिए बल्कि उसमें و تکلّہ والی کیفیت رکھنی چاہیے کہ اولاد یہ نہ ہو کہ لائن تو لگا لی ہے لیکن تربیت کوئی نہیں ہے, پالنے پوسنے کے دماغی کوئی نہیں ہے, صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے اور آپ نے اولاد ڈھیر لگا لی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں وتقو جو یہاں پر ہے, پیچھے جتنے مسئلے بیان ہوئے ہیں ان سب کے لیے وتقو آ جائے گا. پچھلے حیض کا جو مسئلہ بیان ہوا تھا وہ فاتحنہ من حیث امرکم نہ وہ, اور نساؤکم حرثن لکم اس میں, اور فاتو حرثکم ان نشیتم, ان ساری باتوں میں وقدموا لانفسکم, ان ساری باتوں میں تقوی کو پیش نظر رکھنا ہوگا. فرمایا وعلموا انکم ملاقوہ, اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ سے لازمن ملنا ہے. تو تقوی اختیار کرنے کی وجہ بتا دی کہ تقوی اس لیے اختیار کرو گے کہ تمہیں کل خدا کا سامنا کرنا, اس نے باز پرس کرنی ہے, اس نے پوچھنا ہے. پوچھنا ہے تو کون کامیاب ہوگا؟ وہ جس نے تقوی سے کام لیا ہوگا. تقوی سے کون کام لے گا؟ جو بات کو ماننے والا ہو اللہ تعالیٰ کی, اس کو مومن کہا جاتا ہے. تو فرمایا وبشر المومنین, اس لیے مومنین کو بشارت دے دو کہ جو میری ان باتوں پہ عمل کریں گے, مانیں گے, ان کے لیے یقیناً قیامت والے دن اور اللہ کا سامنا کریں گے تو سرخ روح ہوں گے, ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اب یہ جو میاں بیوی کے درمیان تعلق اور اس کے جو حقوق و فرائض ہیں, ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح کی جا رہی ہیں. حیض کے پہلو سے بات کچھ باتیں بیان کی گئیں, اب اولاد کے پہلو سے بات بیان کر دی گئی کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اس کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے, اور اپنی بیگمات کو کیا حیثیت دینی ہے, اور تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. انہی بیویوں سے ملنے کے لیے اوپر جو حیض کی پابندی تھی وہ بھی آپ لوگوں میں بتا چکا ہوں کہ اہل کتاب ان دنوں میں کیسی سختی کرتے تھے. اور اس کے بعد جو حرثن لکم کے پہلو سے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے, فاتحنہ میں نہیں سو امرکنہ کے پہلو سے بھی دیکھ لیجئے. تو فرمایا کہ اب کچھ لوگ عربوں کے ہاں جس طرح سے یہ کام خراب ہوتا تھا کہ وہ ناپاکی کے دنوں میں ہاتھ بھی لگانا پسند کرتے تھے, اسی طرح کچھ عربوں کے ہاں قسم کھا لینے کا رواج بھی تھا. ہمارے ہاں بھی ہے لیکن اس طرح کی قسمیں ہم نہیں کھاتے کہ بیوی کو ملنا ہی نہیں قسم کھا لی. اس طرح کی قسمیں شاید جوہلا ابھی بھی کھا لیتے ہوں. تو اس طرح کی قسموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ آگے ایک بات فرمانے لگے ہیں, ولا تجلو ولا تجلاہ ارزتن, اللہ کو ڈھال نہ بناؤ, لے ایمانکم اپنے قسموں کے لیے, ان تبرو و تتقو و تسلحو بین الناس, کہ تم وفاداری کرو, تم تقوی سے کام لو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ, ان کاموں کے لیے اللہ کے نام کو ڈھال نہ بنا لیا کرو, بچنے کا ذریعہ نہ بنا لیا کرو. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے. یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں وہ کئی طریقے نکالتے ہیں, مثلا بیوی کے حقوق پورے کرنے کے لیے بیوی بچوں کے سامنے قسم کھا لیں گے کہ میں فلاں فلاں ہوں گا اگر میں نے آج کے بعد یہ کام کیا تو. قسم کھا لیا آپ نے, قسم کھا کے اپنے اوپر پابندی لگا, اب قسم کو بہانہ بنا لیا, میں نے قسم کھائی ہوئی میں اس لیے یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا, میں نے قسم کھائی ہوئی یہ کام میں اب نہیں کر سکتا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو ایسی قسم جس میں نیکی کرنے سے, تقوی اختیار کرنے سے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کرنے میں رکاوٹ بنے, وہ قسمیں نہیں کھائی جائیں گی, وہ غلط ہو جائیں گی. نیکی کرنے میں جو قسم رکاوٹ بن رہی ہو, تقوی اختیار کرنے میں آپ نے کہا جی میں قسم کھا لی میں نماز نہیں پڑھوں گا, قسم کھا لی جی کہ میں اپنی بیوی کے خرچہ نہیں دوں گا, بس غصے میں آگے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میں فلاں فلاں ہوں گا اگر میں بیوی کا خرچہ دوں تو, اس بچے کو سکول ہی نہیں بھیجنا, قسم کھا لی کہ میں فلاں فلاں ہوں گا اگر میں نے اس بچے کو سکول کی فیس دی تو. اس طرح کی ساری قسمیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم میرے نام کو ڈھال بنا لو غلط کاموں کے لیے. تو اللہ کے نام کو ارزا نہ بناؤ, ڈھال نہ بناؤ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بچانے کے لیے. کون سی ذمہ داریاں؟ وفاداری کی, تقوی کی, لوگوں کے درمیان اچھا معاملہ کرنے کی. تین الفاظ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں, تینوں کو سمجھ لینا چاہیے. تاکہ تبرو کا مطلب اصل میں یہ बिर्क से निकला हुआ लफ्ज़ है। बिर्क के मानी होते हैं वफ़ादारी, नेकी। वफ़ादारी और नेकी क्या है? हमने जितने भी शरीयत की ज़िम्मेदारियां हों, सोसाइटी की ज़िम्मेदारियां हों, ख़ानदान की ज़िम्मेदारियां हों, बीवी बच्चों की आपस में ज़िम्मेदारियां हों, मियां बीवी के आपस में ज़िम्मेदारियां हों, इनको पूरा करना, इनको निभा जाना, रिश्तों को निभा जाना, वादों को पूरा कर जाना, ज़िम्मेदारियों को अदा कर जाना, ये बिर है, ये बिर है, वफ़ादारी है। आपने मुझे कहा कि कल 4 बजे आ जाना, मैंने वादा कर लिया, तो अगर मैं 4 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ तो ये बिर है। वालदैन बूढ़े हो गए हैं, उनको मैंने संभाला है, उनकी खातर मदारत की है, ये बिर है। नमाज का वक्त आ गया है, मैंने उठ के नमाज पढ़ ली है, ये बिर है। सौदा लेने वाला सौदा आ गया है, मैंने उसको दयानतदारी के साथ पूरा सौदा तोल के दिया है, तो ये बिर है। यानी गोया ज़िंदगी के तमाम दायरों में मैं अगर अदल, इंसाफ, हक पर कायम रहता हूँ तो ये बिर है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे नाम को बिर से बचने के लिए इस्तेमाल ना करो। ये मैंने कसम खाई हुई है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने कसम खाई हुई है। इस तरह हमारे यहाँ बाज़ मुशरिकाना कस्में खा ली जाती हैं। ये बच्चा जी पैदा हो गया है, ये मंगता बच्चा है, इसको अब हम मांग मांग के कपड़े पहनाएंगे, मांग मांग के खाना खिलाएंगे। इस कसम को तोड़ना चाहिए, इसका कफारा अदा करें और बच्चे को सही तरह से पालें। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया। वतत्तकू और तकवा, खुदा खौफी, खुदा का लिहाज करते हुए ज़िंदगी गुजारना, ये तकवा होता है। वतुस्लिहु बैनन्नास, लोगों के लिए भलाई के काम करना, उनमें सुलह करा देना। ऊपर यतीमों का मसला ज़ेरे बहस आया था, उसमें भी अल्लाह ताला ने कहा था कि वसलहु खैरुल्लाह, उसमें जो उनके लिए अच्छे तरीके से सुलह जोई करना, उनके अंदर मामलात को हल करना, उनकी मुश्किलात को दूर करना, उनके लिए खर्चात को करना, उनके पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए। तो उन चीज़ों को अगर कोई आदमी कहता है जी मैं यतीमों को नहीं पालूंगा, मैं यतीमों का मसला है, कसम खाइए जी मैं इस बच्चे को हाथ नहीं लगाना। तो ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें, तो ज़िंदगी के तमाम दायरों को, तत्तकू का ताल्लुक अल्लाह से है, तबर्रु का ताल्लुक भी अल्लाह से है और ज़िम्मेदारियों से है, और तुसलहु बैनन्नास का मतलब दूसरों के मसाइल से। मेरे मसाइल आप लोगों के साथ, आप लोगों के मेरे साथ, पहली चीज़ ये है, अल्लाह के साथ मेरे मसाइल, दूसरी चीज़ ये है, और तीसरी ये कि आप लोगों का कोई मसला है और मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ये तीनों दायरों को अल्लाह ताला ने कहा है कि इन में ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए मेरे नाम की कसम ना खाया करो। मेरे नाम की कसम, कसम खा लो तो उसको निभाना नहीं चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। अलबत्ता तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कानून बता दिया है सूरह माईदा में जाकर के कफारा अदा करना पड़ेगा। जब भी इस तरह की कसम खाई जाएगी उसको लाजमन तोड़ा जाएगा और कफारा अदा किया जाएगा। तो ऐसी कस्में अव्वल तो खानी नहीं चाहिए कि जिसमें आप किसी नेक काम से, किसी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हों, वो कसम नहीं खानी चाहिए। और अगर खा ली है तो उसको लाजमन तोड़ना है और तोड़ने का कफारा अदा करना है। वल्लाहु समीउन अलीम, और इस सारे अमल में याद रखो कि अल्लाह ताला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। जो कस्में तुमने खाई उनको अल्लाह ताला सुन रहा है, और जिस वजह से तुम तोड़ोगे उसको अल्लाह ताला जानते हैं, और जिस वजह से तुमने कसम खाई इसी ज़िम्मेदारी से भागने के लिए उसको भी अल्लाह ताला जानते हैं। तो ये ख्याल ना करो कि तुम कसम खा के बच जाओगे। कसम खाने को नेकियों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो अल्लाह ताला जानता है, सुनता है। तो जब तुम्हें ये गलती का एहसास हो जाए कि मैंने गलत चीज़ के लिए कसम खा ली थी, कसम तोड़ना ज़रूरी होगा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, समीउ अलीम है। तो ये तमहीद है अगले मसले के लिए। असल चीज़ औरतों के साथ हकूक़ व फ़राइज़ की बात चल रही है, उसमें अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि ख़वातीन के साथ जो बाज़ नारवा सलूक किए जाते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। उनमें से दो चीज़ें वाजे कर दी अल्लाह ताला ने, अब तीसरी की तमहीद बांधी है। क्योंकि अरब जो थे वो अपनी बेगमात को इससे सताते रहते थे, कसम खाली, परवाह ही नहीं की, आगे इला भी आ रहा है, इला में कसम खाली के इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं करूँगा, तलाक भी नहीं देनी और बीवी के तौर से रखना भी नहीं है। नतीजतन वो बेचारी परेशान रहती थी। आगे चलकर एक और कसम आएगी सूरह मुजादला में ज़िहार की, कि बीवी को कह दिया तू मेरी माँ की तरह हो, कसम खा ली, बस ये जो चीज़ें हैं उसको सबको अल्लाह ताला ने यहाँ तमहीद के तौर पर ले लिया है कि इस तरह की कस्में खा के ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते तुम, ये कस्में उठाना गलत बात है। चुनाचे फरमाया ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। देखो अल्लाह ताला उन कस्मों पर तो तुम्हारा मुआखज़ा नहीं करेगा, नहीं पकड़ेगा जो तुम लग खाते रहते हो, लेकिन उन कस्मों पर अल्लाह ताला मुआखज़ा करेगा जो तुम अपने इरादे से, दिल के इरादे से खाते हो, जानबूझ कर उठाते हो। बाज़ लोगों को आदत होती है अल्लाह की कसम ऐसा हो गया, अल्लाह की कसम ऐसा, वो कस्में खाते रहते हैं तकी अकलाम के तौर पर, वो अगर ज़ुबान पर इस तरह से निकल जाती है तो उस पर तो अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करेंगे, बेहतर है कि उसको भी छोड़ दिया जाए, लेकिन उस पर अल्लाह ताला सज़ा नहीं देंगे क्योंकि उसमें दिल का इरादा शामिल नहीं होता। लेकिन जिन कस्मों को दिल के इरादे से खाया जाता है, सोच समझ के खाया जाता है, जो अहद बांधे जाते हैं, जो हलफ उठाए जाते हैं, उन सब के ऊपर मुआवजा होगा। बिल्कुल इसी तरह की आयत सूरह माईदा में है जिसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कफ़ारा भी 10 मस्कीनों को खाना खिलाने का मुकर्रर किया है। तो ये जो कस्मों का मामला है, ये यहाँ पर कसम बतौर कसम ज़ेर बहस नहीं है, बल्कि बीवियों को सताने के लिए जो कस्में खा ली जाती हैं, बीवियों की ज़िम्मेदारी पूरी न करने के लिए जो कस्में खा ली जाती हैं, उनकी बात हो रही है, और हर्सुन लकुम के पहलू से जो कस्में खा ली जाती हैं उनकी बात हो रही है। तो पहली बात ये बताई कि मेरे नाम इस्तेमाल करके अपनी ज़िम्मेदारियों से भागा ना करो। दूसरी बात ये फरमाई कि जो कस्में तुम दिल के इरादे से खाओगे उन पर मैं पकड़ूंगा तुम्हें, दिल के इरादे से नहीं खाते उन पर तुम्हें मैं नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला मगफरत फरमाने वाले और बुर्दबार हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब अल्लाह ताला की दो सिफ़ात आती हैं इकट्ठी तो वो एक ही सिफ़त होती है दरअसल, लेकिन उसके दो शेड होते हैं। हमें समझाने के लिए हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं अरबी ज़ुबान में भी उर्दू ज़ुबान में भी कि खुदा की सिफ़ात को बयान कर सकें। ज़ुबानें, इंसानी ज़ुबानें आजिज़ हैं इस बात से कि अल्लाह ताला के सिफ़ात का सही तसव्वुर बयान कर सकें। तो अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान जो इंसानी ज़ुबान थी उसमें बात का तारुफ़ कराने के लिए अपनी सिफ़ात का एक असलूब नया इख्तियार किया। वो असलूब ये इख्तियार किया कि सिफ़ात दो लफ्ज़ी आती हैं ताकि उसका पूरा एक मफहूम सा थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब यहाँ पर गफूर और हलीम को इस्तेमाल किया, गफूर के मानी मगफरत करने वाले के, मगफरत करने का मतलब होता है कि चश्म पोशी कर दी, गलती है लेकिन कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं, डपटा नहीं, सजा नहीं दी। लेकिन हलीम के मानी बुर्दबार के हैं। हलीम बुर्दबार किसको कहते हैं या हलीम किसको कहते हैं? एक बड़ापन और संजीदापन होता है। ये बड़ापन और संजीदापन किस वजह से आता है इंसानों के अंदर? वो तजुर्बात से, बातों को समझने में, अपने ऊपर गौर करने से। तो मिसाल के तौर पर बाज़ूकात होता है ना कि हम दूसरे आदमी की गलती करें तो बहुत गु़स्से में आ जाते हैं, ये ख्याल ही नहीं करते कि इस तरह की गलतियाँ मैं भी कर लेता हूँ, ये ख्याल ही नहीं करते कि आदमी के कोई नफ्सियाती मसले हो सकते हैं, उस वक्त वो जज्बात में आया हुआ हो सकता है, उस वक्त वो किसी इंतकामी जज्बे से, मोहब्बत के जज्बे से, किसी जज्बे से वो मजबूर हो गया था। अल्लाह ताला इन सारी बातों को ध्यान रख लेते हैं कि इसने कसम जो खाई थी तो किस वजह से खाई थी, और जब ज़ुबान से हमारी तकिया कलाम बना होता है तो अल्लाह को पता है कि इंसानों का तकिया कलाम बन जाया करता है। वो बात बात पे कहते हैं अल्लाह की कसम ऐसा हो गया, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोला, खुदा की कसम मैं ये, तो जो बार बार कसमें खा रहे हैं अल्लाह को पता है कि ये आदत बन जाती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसके ऊपर सजा न देने का फ़ैसला किया क्योंकि वो हलीम हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि इंसान के अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ होती। तो जो दूसरों की कमज़ोरी को समझता हो, दूसरों की मजबूरियों को समझता हो और उस लिहाज से बुर्दबाराना अमल करे उसको हलीम कहते हैं। बहुत सारी माओं को आपने देखा होगा कि वो बात बात पे गुस्से में आ जाती, तो वो हलीम नहीं होती क्योंकि वो बच्चों को अपने बराबर समझ रही होती है कि जितनी मैं सियानी हो गई बच्चे भी उतनी सियानी हरकतें करें, तो वो बुर्दबार नहीं है। इसी तरह छोटी सी बात पर ज़्यादा गुस्से में आ जाने वाला आदमी भी बुर्दबार नहीं होता। दूसरों के ऊपर मुसलसल तनकीद करते रहना और अपने ऊपर ध्यान ना देना, ये आदमी बुर्दबार नहीं है। इंसानों में जो बुर्दबार होते हैं वो कोताहियों को गलतियों को एक जगह देते हैं कि हाँ इंसानों से ऐसा हो जाता है, जो ये जगह देगा वो इंसानों के अंदर बुर्दबार होगा। तो अल्लाह ताला इस वजह से नहीं कि अल्लाह की कोई खामियां हैं, लेकिन वो हमारे रब होने की वजह से हमारी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो खुदा का हलीम होने का मतलब यह है कि वो हमारी कोताहियों से, हमारी कमज़ोरियों से, हमारी मजबूरियों से वाकिफ़ हैं। तो कोताहियों, मजबूरियों और जो गलतियाँ होती हैं उस पर अल्लाह ताला सज़ा नहीं देते, जो हम आमदन गुनाह करते हैं उसके ऊपर सज़ा देते हैं। ये खुदा के हलीम होने के मानी हैं। तो अब जो कस्मों का, जो यहाँ पे जितनी तालीम दी गई है उसका मैं दोबारा खुलासा कर देता हूँ, लेकिन ये बात हो रही है आगे एक ख़वातीन के मसले से, पहलू से, कि अल्लाह के नाम की कस्में खाकर या कसम खाकर, जो कि कसम किसी भी खा लें तो अल्लाह का हवाला आ जाता है कि मैंने कसम खाई हुई जी, मैं अब इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नाम को अपनी ज़िम्मेदारियाँ, वफादारियाँ और तकवे के कामों और लोगों के दरमियान मामलात को दुरुस्त करने के लिए जितनी भी तुम कस्में खाओगे इनमें रुकावट डालने के लिए तो वो गलत होंगी, इसलिए अल्लाह का नाम इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना किया करो। अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए, ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए अल्लाह की कस्मों को इस्तेमाल ना करो। और जो कस्में तुम खाते हो बेमानी तौर पर, शौरी तौर पर नहीं खाते हो, उनके ऊपर अल्लाह ताला मुआवजा नहीं करेगा, क्योंकि वो हलीम है। और लेकिन जो तुम जानते बूझते खाओगे उनके ऊपर मुआवजा होगा, सिवाय इसके कि तुम तौबा कर लो, ज़ाहिर है वो भी खुदा की मगफरत और हलीम के तहत है। तो इससे हमें एक तसल्ली होती है, खुदा हमारा जो खुदाए मेहरबान है उसके तरफ से, चूँकि वो हकीम है अल्लाह ताला और हिकमत वाली ज़ात, अपनी दानाई से चीज़ों को देखती है, वो बाज़ूकात ढील दे देती है, बाज़ूकात फौरन पकड़ लेती है। तो ये सब कुछ उसकी हिकमत के तहत हो रहा होता है। इस कायनात में कोई काम भी, यहाँ तक कि शर भी जो पैदा होता है वो भी हिकमत के बगैर नहीं होता, उसके पीछे भी खुदा की हिकमतें पोशीदा होती हैं। जब कोई कत्ल हो जाता है तब, जब किसी पर जुल्म हो रहा था तब, पीछे कुछ हिकमतें कार फरमा होती हैं कि उसको मोहलत दे दी जाती है। अगर वो हिकमतें पेश नज़र ना हों और मोहलत दे दी जाए तो फिर एतराज़ हो सकता है, लेकिन जिन चीज़ों को अल्लाह ताला होने देते हैं ये याद रखिए कि कोई ना कोई हिकमत पेश नज़र होती है। उन हिकमतों में एक हिकमत सबसे बड़ी जो है, जो हर वक्त मौजूद रहती है, वो हमारा इम्तिहान है। मेरे ऊपर होने वाला जुल्म जो आप कर रहे हैं वो तो सरी आपके लिए इम्तिहान है, लेकिन मेरे ऊपर कोई जुल्म कोई और शख्स कर रहा है वो भी आपके लिए इम्तिहान है। सवाल पैदा कर देगा कि अल्लाह ताला की दुनिया में एक शरीफ आदमी पर जुल्म क्यों, अगर आप मुझे शरीफ मानते हो तो, एक शरीफ आदमी पर जुल्म क्यों हो रहा है, समझ नहीं आएगा। बच्चों को कत्ल कर दिया, समझ नहीं आएगा, सवाल पैदा हो जाएगा। सवाल पैदा हो जाएगा तो आप मज़हब के बारे में, खुदा के होने के बारे में दिल में खटक पैदा हो जाएगी, खटक पैदा हो जाएगी तो आप इम्तिहान के, बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मुश्किल तरीन सवाल दुनिया का वो सामने आ गया कि खुदा है या नहीं। किस वजह से आ गया है? एक जुल्म की वजह से, एक शर की वजह से। तो जितने भी शर हैं उनमें एक सवाल पैदा करने के लिए अगर जान है तो अल्लाह ताला उसको होने देते हैं। कायनात का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि हर वक्त आपको सवालात का सामना रहे, खुदा है या नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है कि नहीं है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है कि नहीं है। हर वक्त ये सवालात आपके सामने रहें, आ जाएं, ये भी हिकमतों में से एक हिकमत है। इसको अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो याद रखिए कि फिर कदम कदम पर ठोकरें लगेंगी। कोई काम अल्लाह ताला दुनिया में ऐसा नहीं करते कि वाज़े तौर पर, सरीह तौर पर, हतमी तौर पर दो टोक तरीके से कह सकेंगे अल्लाह है, नहीं करते अल्लाह ताला, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अल्लाह ताला बिल्कुल सामने आ जाए। हज़रत ईसा के साथ जो कुछ हो रहा था अल्लाह ताला सामने नहीं आए, ये आ गए थे। जब आपको सलीब चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा होगा, जब आपके उम्मती जो होने चाहिए थे यहूदी वो आप पे बगावत के इल्ज़ाम लगा रहे थे, अल्लाह ताला ज़ाहिर नहीं हुए। सईद आयशा पर जब तोहमत लग रही थी, अल्लाह ताला ज़ाहिर नहीं हुए या हो गए थे। तो ये इसलिए ज़ाहिर नहीं होते ताकि ये इम्तिहान की फ़ज़ा बाकी रहे। दुनिया में जो हमें इम्तिहान दर पेश है, उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो पर्दा है। खुदा ने एक पर्दा डाल रखा है जिसको गैब कहते हैं, कि अल्लाह ताला दिखाई नहीं देते, और बस इसी में इम्तिहान है। इसलिए अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि जो अल्लाह से डरते हैं बिल गैब, बिन देखे अल्लाह को, कामयाब वही होंगे। तो गैब के पर्दे में सब कुछ हो रहा है। तो गैब के पर्दों में ये सवाल आदि पैदा हो जाते हैं कि एक आदमी ने जुल्म कर दिया है एक मासूम आदमी के ऊपर, एक बेवा से उसके प्लॉट छीन कर, उसकी ज़मीनें छीन कर चौधरी साहब ने गांव से निकाल दिया है। सवाल पैदा हो जाएगा। तो अगर अल्लाह ताला हर मासूम की साथ देने लग जाए, उधर चौधरी साहब एक बेवा को गांव से ज़मीनें छीन कर निकालें, उधर चौधरी साहब की टांग टूट जाए, तो गैब का पर्दा उठ जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला गैब के पर्दे को कायम रखने के लिए काम थोड़ी देर के लिए होने देते हैं, जितने उनकी हिकमत के मुताबिक होते हैं। तो इस वजह से हमारे दौरे हाजिर में कार्ल मार्क्स के बाद ख़ास तौर से ये सवाल बहुत शिद्दत से उठाया गया है, जिस दुनिया में इतना शर पाया जाता है, उस दुनिया को बनाने वाला खुदा नहीं हो सकता। ये इतना संगीन सवाल बना दिया। फ़लसफे की टर्म में इसको प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहते हैं, कि दुनिया में मौजूद शर का मसला। तो मसला शर क्या है? खुदा के गैब का पर्दा है। उसका जवाब एक ही है, उस पर्दे को अल्लाह ताला हटाना नहीं चाहते, क्यामत तक नहीं हटेगा। इसलिए कहते हैं कि मरते वक्त जो तौबा करेगा वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि गैब का पर्दा उठ चुका होता, उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। जब फरिश्ते नज़र आ जाएं, मौत के फरिश्ते जब आ जाएंगे, तो बस सब कुछ खुल जाएगा कि ओहो, फरिश्ते भी हैं, खुदा भी है, सब कुछ। कुरान ने इसको बयान किया है कि तुम्हारी अल यौम बसरुक अल हदीद, आज तुम्हारी नज़र बहुत तेज़ है, उस वक्त गैब के पर्दे हट चुके होंगे, हर चीज़ नुमाया होगी। तो गैब के पर्दे में रहते हुए हमने तकवा इख्तियार करना है, गैब के पर्दे में रहते हुए हमने नेकी इख्तियार करनी है, गैब के पर्दे में रहते हुए हमने बात को मानना है। ईमान वाला वो है जो गैब के पर्दे में माने। ये नहीं होना चाहिए जो यहूद कहते थे कि हत्ता नर अल्लाह जहरतन, हम उसको आपकी बात उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह ताला को खुला खुला न देख लें। तो अल्लाह को खुलम खुला देखने का कोई इम्कान नहीं है। हज़रत मूसा का मुतालबा अलैहिस्सलाम आप लोगों के सामने ही है। उन्होंने कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा नहीं देख सकोगे, अगर इस पहाड़ पर मेरी तजल्ली देख सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, तो मुझे भी देख सकोगे। वो तजल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सके। खर्रा मूसा साइका, हज़रत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। तो खुदा के गैब का पर्दा हटने का मतलब सादा बात नहीं है। तो इसलिए ये जो खुदा की दुनिया है, ये गैब की दुनिया है, इसमें तलाकें भी नाजायज़ होनी है, घरों से निकाला भी जाना है, इसमें नाजायज़ कत्ल भी होने हैं मासूम लोगों के, मुसीबतें भी आनी हैं, मजालम भी आने हैं। कीमत क्या है? कि हमारा इम्तिहान हो रहा है, और इम्तिहान होने के लिए गैब का पर्दा ज़रूरी है, बस ये कीमत है। तो जो स्कीम बनाई जाती है, उस स्कीम के लिहाज से कुछ कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। आगे जो जिस वजह से ये तमहीद बांधी गई कस्मों की, वो हुक्म आगे आ गया है। फरमाया कि लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अरबाते अशहरिन फ़इन्फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम। वो लोग जो अपनी बीवियों से जुदाई की कसम खा लेते हैं, उनको 4 महीने का मौका दिया जाता है। अगर वो कसम वापस ले लेते हैं तो ठीक, इस सूरत में अल्लाह ताला फिर मगफरत फरमाने वाला मेहरबान है। ये ईला का जो फिका में लफ्ज़ बोला जाता है, ईला का मतलब कसम खाना होता है। कसम किसी भी मौके पर खाई जा सकती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो गया अपनी बीवी को के लिए ये कसम खाना कि मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, तुम आज से जुदा, मैं तुमसे जुदा, लेकिन तलाक नहीं दी, ताल्लुक मुनक़ते किया, सेपरेशन कर ली, तलाक नहीं दी। तो फरमाया कि जो तुम में से अपनी बीवियों के साथ ये कसम खा लें, तो उनको 4 महीने की मोहलत है। अगर वापस आ जाएं तो ठीक है, और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। तो अब जो कसम ये नाजायज़ कस्मों में से है जो ऊपर हमने बात की है उसकी एक सबसे नाजायज़ किस्म ये थी जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमा दिया। तो अब पिछली आयतों को मिलाकर हुक्म क्या बना कि अगर किसी आदमी ने ईला की कसम खा ली है तो 4 महीने के अंदर अंदर कसम तोड़कर कफ़ारा अदा कर दे तो अल्लाह ताला उसकी इस गलत कसम के ऊपर सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि बीवी के हकूक अदा करना तबर्रू है, बिर का लाजमी तकाजा है। अगर आपने बीवी के हकूक अज़दवाजी ख़ानदानी खाने पीने के नान नफ़के के पूरे नहीं किए उसके लिए कसम खा ली है तो आप गुनाहगार हैं, पीछे गुजर चुका, अल्लाह ताला मुआवजा करेंगे। उस मुआवजे से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि 4 महीने की मोहलत दी जा रही है। जब भी कोई ईला की कसम खा लेगा तो उसके पास 4 महीने का टाइम है, इस 4 महीने के अंदर अंदर कसम वापस ले लो, कफ़ारा अदा कर दो तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अगर नहीं तो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे, वो तलाक का फ़ैसला है। तो अल्लाह ताला ने दो रास्ते बता दिए ईला की कसम खाने वालों को कि 4 महीने के अंदर अंदर या तो ईला की कसम को वापस लेना है और उसका कफ़ारा अदा करना है या तलाक का रास्ता इख्तियार करना है। लेकिन ये तुम खुद सोचोगे, खुद फैसला करोगे, अल्लाह ताला नहीं कह रहे कि यानी आपने कसम दायरे किसी वजह से खाई है, तो अगर कसम खाने का मतलब यह है कि बीवी को छोड़ देना है तो छोड़ने का फ़ैसला करो, फिर लटकाए क्यों रखे हुए। तो असल में लटकाए रखना मना है, उसमें 4 महीने की मोहलत दे दी कि 4 महीने से ज़्यादा तुम अपनी बीवी को लटका के नहीं रख सकते, कि ना उसको तलाक दे रहे हो ना उसके इज़्दवाजी हकूक पूरे कर रहे हो। अगर ये नहीं है तो फिर तुम पकड़े जाओगे, और अगर छोड़ दोगे 4 महीने के बाद वापस ले लोगे तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले। तो अब ये ईला की कसम में अल्लाह ताला ने एक रास्ता बताया है, वो रास्ता यह है कि कसम खाने वाला 4 महीने के अंदर अंदर अपनी कसम वापस ले लें। इसमें दो बातों का इम्कान है जो मैं दोनों वाजे कर देता हूँ, फिर आप लोगों को पर छोड़ देता हूँ। एक ये कि इस आयत का यह मतलब है कि 4 महीने के अंदर अंदर अगर वो वापस कर लेता है तो कफ़ारा भी अदा नहीं करना पड़ेगा। एक इम्कान इस बात का मौजूद है कि 4 महीने के अंदर अंदर कसम वापस ले लेता है तो कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर दें। और 4 महीने के बाद अगर कसम वापस लेगा तो फिर कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। एक हुक्म ये बन सकता है। दूसरा हुक्म ये बनेगा कि नहीं, बस तुम कफ़ारा अदा करोगे, क्योंकि वो सूरह माईदा में अलग से हुक्म मौजूद है, तुम कफ़ारा अदा करोगे जब भी कसम तोड़ोगे, खा 4 महीने के अंदर या 4 महीने के बाद, हर सूरत में कफ़ारा अदा करना है। लेकिन बहरहाल तुम्हें ईला के बाद 4 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 4 महीने से ज़्यादा टाइम लगाओगे तो सजा पाओगे। तो ये हुक्म हो गया। अब इस हुक्म के पीछे क्या था? पीछे वही बात है जो पीछे हैज के केस में आ गई थी कि बीवियों को तंग करने के लिए वो बीवियों के हकूक पूरे नहीं करते थे, ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते थे, उसके लिए एक हैज़ का बहाना बनाया हुआ था अहले किताब ने कि जी इन दिनों में तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए, जैसे कि कोई अछूत चीज़ आ गई है। और दूसरी ये बात कर दी कि जो उनके साथ ताल्लुकात हैं वो किस हैसियत से हैं, वो हरसुन लकुम के पहलू से हैं, और उनकी एक शान है, उनका एक वकार है, उस शान और वकार को बाकी रखना चाहिए, इस हैसियत से उनको देखना चाहिए कि वो तुम्हारी औलाद की माएँ हैं, उनको इस पहलू से देखो। और दूसरा ये कि कसम खा खा कर उनके साथ ताल्लुक़ को लटकाए रखना, उनके हकूक पूरे ना करना, इसको अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, और उसके लिए कसम को पहले बता दिया कि कसम किस तरह से खानी चाहिए किस तरह से नहीं, और अल्लाह के नाम को बहाना नहीं बनाना चाहिए ज़िम्मेदारियों से निकल भागने के लिए। तो ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी हैं हर सूरत में, और उसमें जो मरकज़ी बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं उसमें बिर, तकवा और इस्लाह बैनुन्नास, ये 3 बड़े चीज़ें हैं जो हर सूरत में कायम रखनी है, खा जान चली जाए, कसम की भी परवाह नहीं करनी है। अगर वफादारी में नेकी में कोई रुकावट आती है तो कसम की भी परवाह नहीं की जाएगी, हालात की भी परवाह नहीं की जाएगी। हाँ, जहाँ मुशक्क़त है अल्लाह ताला ने नरमी के कायदे भी दिए हैं, रुख्सत के कायदे भी दिए हैं, लेकिन बिल्कुल रोक देना ये बिल्कुल नाजायज़ हो जाएगा। तकवे के रास्ते में कसम को आड़े नहीं आना चाहिए, کسی اور چیز کو بھی آڑے نہیں آنا چاہیے. لوگوں کے معاملات کو درست کرنے میں آپ کا اپنا معاملہ نہیں ہے, لیکن اب دوسروں کا معاملہ ہے, اس میں بھی قسم کھانا. جی وہ ان کا جھگڑا چل رہا ہے, میں نے تو قسم کھا رکھی ہے ان کو بات بھی نہیں کرنی. نہیں, ان کا جھگڑا اگر آپ چکا سکتے ہیں تو جانا پڑے گا, آپ کو قسم توڑنی پڑے گی. ہمارے یہاں جو مردانہ برائیوں میں سے برائیاں ہیں, ان میں یہ بڑی برائی ہوتی ہے کہ شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر حق حاصل ہے. مثلاً ایک نوجوان آیا تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ میرے سامنے, طلاق کا کیس چل رہا تھا, تو اس نے کہا جی کہ میں نے پچھلے 12 سال سے اس کو اپنے بھائی سے نہیں ملنے دیا. تو میں نے کہا تم نے ضلالت کھٹی ہے, نیکی کمائی ہے کوئی؟ تمہیں کس نے حق حاصل دیا ہے؟ یہ حق دیا ہے کہ اللہ نے جس صلہ رحمی کو حکم دیا تم اس کے خلاف کھڑے ہو کہ تم یہ صلہ رحمی نہیں کر سکتی. تو ہمارے ہاں جو یہ خاص قسم کے مردانہ وجاہتیں ہیں, یہ گناہ کی باعث ہے. کسی شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے ماں باپ سے ملنے سے روک سکے. آپ نہیں جانا چاہتے, نہ جائیں, اس کو چھوڑائیں, آپ اس کو نہیں روک سکتے. ویسے تو آپ کو بھی جانا چاہیے, خواہ کوئی بھی قسم کھائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ صلہ نیکی کے راستے میں صلہ رحمی میں رکاوٹ بن جائے. ایک کیس میرے پاس یہ طلاق آیا کہ اگر آج کے بعد تم اپنے فلاں بھائی کے گھر گئی تو تم پر 3 طلاقیں وارد ہو جائیں گی. میں نے اس بی بی سے کہا یہ شوہر اس قابل ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو؟ تمہیں تو ویسے چھوڑ دینا چاہیے, طلاق واپس کیوں لوانا چاہتی ہو؟ یہ اس قابل نہیں ہے. جس آدمی کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں صلہ رحمی کے مسئلے میں طلاق کے ساتھ جوڑ رہا ہوں یا قسم ڈال رہا ہوں, وہ شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہیے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاتون رہ سکے. تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایلا ہے وہ کرنے والوں کے لیے 2 راستے ہیں, ایک طلاق کا راستہ ہے اور ایک قسم واپس لینے کا. تو قسم واپس لینے تک آج ہم نے بات کر لی ہے, طلاق کے اوپر آگے بات کریں گے, کیونکہ پھر وہ پورا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے. یہ واضح رہے کہ سورہ طلاق میں جو طلاق کا حکم ہے اس کی یہ کچھ سوالوں کے جواب ہیں جو یہاں پر دیے گئے ہیں. یہاں روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.